السلام علیکم، ایس بی پی پوڈ کاسٹ کی ایک ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد قمر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی معیشت بیرونی ادائیگیوں کے توازن یعنی بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے کئی قسم کی دشواریوں سے دوچار ہے۔ گزشتہ مالی سال یعنی FY22 میں کا جب آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور سال کے اختتام تک یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $17 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں نے مل کر مختلف قسم کے اقدامات لیے۔ اس پورے پروسیس میں ہمارے کاروباری طبقہ اور بالخصوص امپورٹرز کو کئی قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان تمام اقدامات کی بدولت ان کی روزمرہ کاروباری سرگرمیوں پر اس کا برا اثر پڑا۔ ایسی صورتحال میں یہ بات قطعاً حیران کن نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مختلف جو ہمارے تجزیہ نگار تھے انہوں نے مختلف قسم کے خدشات کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کی افواہیں بھی پھیلتی رہیں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے وہ تمام حقائق سامنے رکھیں گے کہ جو ان خدشات اور افواہوں کی نفی کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب جمیل احمد صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ گورنر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو آف کورس حالات جو ہیں وہ خاصے چیلنجنگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو بیرون ادائیگیوں کا توازن ہے اس میں ہمیں کافی مشکلات سے ہم دوچار ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ صورتحال کس قدر چیلنجنگ ہے؟
سب سے پہلے تو عابد صاحب شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جس میں کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ بین الاقوامی حالات کی وجہ سے ہیں اور کچھ ہمارے ملکی حالات کی وجہ سے۔ تو بین الاقوامی حالات میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکرائن روس کی جنگ اور اس کے اثرات، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں اجناس کی قیمتوں کا بڑھنا اور تیل اور گیس کی قیمتوں کا بڑھنا، اس کے علاوہ افراط زر کا پوری دنیا میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے سینٹرل بینکس نے مانیٹری ٹائٹننگ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو ہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس کے بھی اوپر آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ سرمایہ جو کہ نارملی ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف آتا تھا وہ اب دوسرے ڈیولپ کنٹریز کی طرف جانا شروع ہو گیا، کیونکہ اس میں ان کو بہتر ریٹرن ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری ریٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہے وہ سب آپ لوگوں کے نالج میں ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ ہمارے پہلے ہی ملکی مسائل کچھ درپیش تھے ملکی لیول کے، لیکن اس کے ساتھ حالیہ جو سیلاب ہیں ان کا بھی کافی اثر ہماری معیشت کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری امپورٹس کے اوپر کچھ امپیکٹ ہوا ہے، کچھ ہماری ایکسپورٹس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے میرے حالے کے سچویشن جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت سارے اقدامات آلریڈی کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ہے بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں، اور ان کا اثر آہستہ آہستہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی۔
گورنر صاحب، بالکل، ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہم نے دیکھا کہ جولائی اکتوبر میں اس میں خاصی کمی آئی ہے اگر ہم اس کو پچھلے سال سے دیکھیں، لیکن ابھی بھی بعض تجزیہ نگار یا مارکیٹ جو ہے وہ اس کی جو فائنینسنگ ہے، گرچہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لو ہے لیکن اس کی فائنینسنگ کے حوالے سے خاصے اندیشوں کا شکار ہے۔ مارکیٹ کو بنیادی طور پہ تشویش یہ ہے کہ کیا ہم اپنے خاص طور پہ جو بیرونی ملک سے لیے گئے قرضے ہیں کیا ہم اس کو واپس کر پائیں گے یا نہیں، یہ کس حد تک ان کی یہ تشویش درست ہے؟ فائنینسنگ کے حوالے سے آپ کیا آگے کی ایک موجودہ صورتحال کیا ہے اور آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟
اس میں میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، آپ جب ہم نے یہ موجودہ سال مالی سال جب شروع کیا تھا تو اس وقت اس سال کے لیے پلاننگ کیا کی تھی، اس سال کے لیے پلان یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے جتنے ٹوٹل غیر ملکی قرضے جو ہمیں واپس کرنے ہیں ان کا حجم کتنا ہے، اور ہمارے پاس جو وسائل ہیں جو انفلوز آئیں گے اور دوسرے وسائل ہیں ان میں سے ہم کس طرح ان کو موبلائز کریں گے اور کیسے ان قرضوں کو پے کریں گے۔ تو شروع سال میں جو ہم نے پلاننگ کی تھی اس کے مطابق، اور جو ہمارا ایکچوئل ری پیبل ڈیٹ ہے اس میں کوئی 23 بلین ڈالر کا جو ری پیبل ڈیٹ تھا، اور 10 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ٹوٹل ملا کے کوئی 33 بلین डॉलर बनते थे, जो कि हमने जो वसाइल हमें अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम अपना साल, ये माली साल जो है उसको बिल्कुल ठीक तरीके से गुजार सकें। अब इसमें जब हम देख रहे हैं कि 23 बिलियन डॉलर का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें रीपे करना था, उसमें से ऑलरेडी 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस गैर मुल्की कर्जे वापस कर दिए हैं, और इसके अलावा 4 बिलियन डॉलर जो है वो बाइलेटरल लोन जो थे, जो कि ऑलरेडी मुतलका गवर्नमेंट्स जो हैं उनके साथ मिलके उनको जो है वो उनकी रोल ओवर जो है वो हो चुका है और उसके एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हो चुके हैं। तो इस तरह ये 6 बिलियन और 4 बिलियन 10 बिलियन तो टोटल ये आप कह लें कि ऑलरेडी जो गैर मुल्की कर्जा है वो सेटल हो चुका है। उसके बाद ये आप 23 में से 10 निकाल दें तो 13 बिलियन डॉलर जो है वो रह जाता है। इस 13 बिलियन डॉलर में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट लोन्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कमर्शियल लोन्स हैं। तो इनका 8.3 बिलियन डॉलर जो है ये इनकी रोल ओवर की हमें तवक्को है, और जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है बातचीत हो चुकी है। सो अगर इन 8.3 बिलियन को भी हटा दें तो 13 में से 8.3 बिलियन ये निकलने के बाद हमारे पास कोई 4.7 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि हमें वापस करने हैं। इस 4.7 बिलियन में से 1.1 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि कमर्शियल लोन हैं, जो कि हमने गैर मुल्की बैंकों को वापस करने हैं, और इसके अलावा हमें कोई अब इस साल के अंदर कोई यूरो बॉन्ड वापस नहीं करना, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है। तो ये 1.1 बिलियन ये गैर मुल्की है और कमर्शियल लोन्स हैं, और इसके अलावा कोई 3.5 बिलियन के करीब जो है वो मल्टीलेटरल्स के लोन्स हैं और दूसरे लोन्स हैं जो हमें वापस करने हैं। तो ये कुल मिला के हमारा ये कर्ज़ा वापस करने वाला है, जबकि जब हम इनफ्लोज की तरफ देखते हैं तो अभी तक हमारे पास पहले 5 माह में इनफ्लोज जो आए हैं वो 4 बिलियन डॉलर के हैं। तो हमने जब साल शुरू किया था तो प्लान किया गया था कि 34 बिलियन डॉलर से 38 बिलियन के डॉलर के दरमियान हमारे इन्फ्लोज होंगे, जबकि 4 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं और बाकी ये कुछ रोल ओवर हुए हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लोज जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। मैं इसको इस तरह कहता हूं कि जो हमारे पास इन्फ्लोज जो साल पहले साल में पहले इस साल के पहले हाफ में आने थे वो अब दूसरे हाफ में चले गए हैं, और जबकि हमारे जो लोन रीपेमेंट्स हैं वो उसी तरह हो रही हैं जैसे कि हमारी मेच्योरिटीज आ रही हैं। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अब ज़्यादातर इन्फ्लोज हमारे दूसरे हाफ में आएंगे और उसके नतीजे में हमारे जो रिजर्व जो हैं वो मजीद जो है उनमें बेहतरी आना शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे एनालिस्ट जो इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और मनफी किस्म का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, और डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में, और इंशाल्लाह हम आने वाली पेमेंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे।
गौर सर, आपने अभी रिजर्व्स का जिक्र किया तो हमने देखा कि अभी हाल ही में हमने सुकूक बॉन्ड्स की भी अदायगी की है तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के करीब, और इसका असर अभी हम देखें कि हमारे रिजर्व्स में मजीद थोड़ी सी कमी उसमें हमें नजर आएगी। रिजर्व्स के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि अब हमारे रिजर्व जो है वो खासे क्रिटिकली लो लेवल पर चले गए हैं और इसके बारे में भी तश्वीश है, तो क्या वाकई हमें कोई इसके बारे में तश्वीश होनी चाहिए?
जी, हमारा जो 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 पिछले हफ्ते के दौरान जो हमारे रिज़र्व थे वो कोई 7.9 बिलियन डॉलर के थे। 500 मिलियन डॉलर जब हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आए तो उसके बाद हमारे रिज़र्व 7.9 बिलियन डॉलर के ऊपर गए। पब्लिकली शायद ये इन्फॉर्मेशन है कि हमने स्कूक वापस किया है, बट हमने स्कूक के अलावा भी कर्जे इस हफ्ते में वापस किए हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि इनफ्लोज भी लाइंड अप थे तो वो सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करने के बाद अब हमारे रिज़र्व जो है वो पिछले हफ्ते ने जो के एंड पे 2 दिसंबर को जो हफ्ता एंड हुआ है उसमें 6.7 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व्स हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमने 2 गैर मुल्की बैंकों को कोई 1.2 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस दिए हैं, एक को 500 मिलियन डॉलर वापस दिए हैं, दूसरे को 700 मिलियन डॉलर दिए हैं, और ये दोनों बैंकों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है और उनकी तरफ से हमें कमिटमेंट है कि ये दोनों बैंक हमें वापस जो है वो रीलैंड कर देंगे, और उसके नतीजे में जब ये हमारे पास 1.2 बिलियन डॉलर उनसे वापस आ जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे रिजर्व जो है फिर वापस तकरीबन उसी लेवल पे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजर्व्स के ऊपर इन सब लोन बड़े बड़े लोन्स की पेमेंट के बावजूद भी कोई ख़ास असर इंशाल्लाह नहीं आएगा। और साथ साथ जो हमारे दूसरे इन्फ्लोज जो हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें $3 बिलियन एक फ्रेंडली कंट्री के साथ है, इसके अलावा दूसरे जो हमारे इंटरनेशनल मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं उनके साथ जो इन्फ्लोज आने हैं, तो उसके ऊपर भी सबके ऊपर काम हो रहा है, और वो भी जैसे जैसे आने शुरू होंगे तो उसके नतीजे में हमारे रिजर्व जो है वो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।
गौरव साहब, अभी आपने एक फाइनेंसिंग के हवाले से तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है, आपने ये भी जिक्र किया कि नेशनल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन होने की वजह से जो बैन अल-अक़वामी तौर पे इंटरेस्ट रेट्स में भी इजाफा हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में और पाकिस्तान की भी जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में हमें लगता ये है कि शायद यूरो बॉन्ड या सकूक से अब हमें मजीद कर्जा हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और या ये कि कम अज़ कम ये महंगे काफ़ी होंगे, तो इसके अलावा हमारे पास अब और क्या रास्ते हैं कि जिससे हम फ्यूचर में अपनी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे?
जी, आप ठीक कह रहे हैं, इस साल में यूरो बॉन्ड हमारी जो रेटिंग जिस लेवल के ऊपर है और दूसरा इस तरह रिस्क प्रोफाइल जिस तरह बढ़ा हुआ है, तो इस इन हालात के अंदर इस वक्त जो है वो यूरो बॉन्ड तो मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट करना एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो इसलिए हम यूरो बॉन्ड इस साल में मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल बैंक्स भी अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो इतने ज़्यादा फोर्थकमिंग नहीं है, तो लेकिन साथ में हमने जो दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया है, और कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें कि हमें दूसरी बायलैटरल जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, तो वहाँ से कुछ लोन्स जैसे मैंने पहले कहा कि 1.2 बिलियन जो इंशाल्लाह जल्द आएगा वापस दो बैंकों से, और उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसके नतीजे में जो इन्फ्लोज आएंगे उससे हमारे रिजर्व बिल्डअप होंगे, और फिर जैसे ही हमारे रिजर्व की पोजिशन और बेहतर होगी और हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने शुरू होगी, तो फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल बैंकों से दोबारा से जो है वो जो इन्फ्लोज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और शुरू हो जाएंगे।
अच्छा गवर्नर साहब, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे हम जो नए कर्जे लेते हैं आम तौर पे उसका एक काफ़ी हिस्सा जो है वो हमारे पुराने कर्जों की अदायगियों में निकल जाता है, और ये कोई पाकिस्तान के साथ अकेले पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नहीं है, दुनिया भर में ममालिक जो है वो ऐसे ही करते हैं। अब जबकि हमारे चूँकि कर्जों का हजम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, अगर हमें मुनासिब और मज़ीद कर्जे अगर नहीं मिलते तो ऐसी सूरत में फिर हमें जो सबका कर्जे हैं उनकी अदायगियों में दिक्कत हो सकती है, लोग कहते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपने भी हमेशा एक बड़े एतमाद के साथ ये कहा है कि नहीं हम ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो आप आखिर इतने पुरेतमाद क्यों दिखाई देते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे?
देखिए, मैं तो कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने मुल्क के डेट प्रोफाइल को देखता हूँ कि हमारे कर्ज़ों की जो नेचर है वो क्या है, तो उसमें ज़्यादातर हमारे पास मल्टीलेटरल और बाईलेटरल लोन्स हैं और बहुत कम कमर्शियल लोन्स हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि कमर्शियल लोन्स तो अब जो हमने रीपे करने इस माली साल के दौरान वो सिर्फ $1.1 बिलियन के रह गए हैं, और उसके साथ जो है वो कुछ मल्टीलेटरल लोन्स हैं, तो ये इनको रीपे करने के लिए हमारे पास इस वक्त सफिशेंट रिजर्व्स हैं, और जो इनफ्लोज हमें एक्सपेक्टेड हैं उनके आने से ये मजीद जो है वो हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जो है वो बहुत सारे और जो है वो स्टेप्स लेने हैं, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज़ करना, हमारे रेमिटेंसेज का जो इस वक्त जो स्लो डाउन है या उसमें डिक्रीज आ रहा है उसको हमें मुनासिब इकदाम लेके उनको ठीक रखना ताकि हमारे पास ये इनफ्लोज आते रहें, तो वो एक मीडियम टर्म के एक्शंस हैं जिनके ऊपर फोकस अलग से किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट जो हमारी जो डेट रीपेमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि उसमें हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह कामयाब होंगे।
गौसा, आपने जिक्र किया इम्पोर्ट्स को कमी करनी चाहिए, ये हमने देखा कि मेरा थोड़ा सा एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हमारे इकदाम की वजह से ये बेहतर हो गया है, लेकिन ये सारे इकदाम क्या थे कि हमने इम्पोर्ट्स में कमी की एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके, एक दफ़ा जब हम दोबारा अपनी नॉर्मल सिचुएशन में जाते हैं तो इम्कान ये है कि ये इम्पोर्ट्स दोबारा बढ़ेंगी और जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोबारा बढ़ सकता है, तो आपके ख्याल में जो हमारा जो ख़ास तौर पर ये एक्सटर्नल सेक्टर की जो ये जो कमज़ोरियाँ हैं इससे निपटने के लिए हमारे लिए ज़्यादा पायदार तरीकाकार क्या है, वो हम ऐसे क्या इकदाम लें कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो एक सस्टेनेबल लेवल पर रहे और हमें बार बार ये दिक्कतें इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े?
जी, इसमें पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करंट अकाउंट के ऊपर बता देता हूं कि जो हमने जब साल शुरू किया था तो उस वक्त ये हमारा अंदाज़ा था स्टेट बैंक की तरफ से कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 10 बिलियन डॉलर के करीब रहेगा, और उसमें बाद में चूँकि फ्लड्स का उस वक्त नहीं अंदाज़ा था और ये फ्लड्स वाली सिचुएशन हमारे पास बाद में आई, तो उस फ्लड्स के रिसेंट जो जो सैलाब हैं उसके नतीजे में हमारे इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो कुछ उसका असर आया, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा वीट इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा जो है वो हमारी काटन के ऊपर, काटन क्रॉप के ऊपर उसका असर हुआ है, तो काटन भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, और इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्टेबल जो क्रॉप्स हैं जिसमें खासकर राइस की क्रॉप है, चावल की क्रॉप है, तो वो उसमें चूंकि चावल की कास्ट जो है वो उस तरह उसकी उसमें भी असर हुआ है, तो उसके नतीजे में शायद हमारी चावल की फसल उस लेवल की नहीं होगी जितनी के हम पहले शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके नतीजे में हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो जो हम बरामद करते हैं वो उसमें कुछ कमी आएगी चावल की फसल से जो हमें ज़रे मुबादला हासिल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता ये था कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो शायद 2 बिलियन या 2 से 3 बिलियन डॉलर जो उसमें अजाफा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ जो दूसरी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस का कम होना, इसके अलावा हमने कुछ जो स्टेट बैंक की तरफ से जो पॉलिसी एक्शंस लिए हैं जिसमें हमने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाए हैं ताकि उससे जो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर के करीब जो आउटफ्लो हो रहा था वो कम होके उसमें कुछ शायद हाफ ए बिलियन डॉलर की कमी आएगी और उससे हमें कुछ सेविंग होगी, और इसके अलावा कुछ और जो हमने पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, इन सब के नतीजे में अब हमारा ख्याल ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल के लिए जो है वो 10 बिलियन डॉलर से कम ही रहेगा। अगर जब हम GDP के साथ उसको देखते हैं तो समझ लें कि आप GDP का कोई 2.5 से 2.75% के करीब जो है वो ये रहेगा इस साल के लिए। तो इससे एक तो ये हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि जो हमें लग रहा था कि प्रेशर आएगा ये हमारे सैलाब की वजह से, तो वो उस तरह वो इंशाल्लाह वो नहीं आएगा। साथ साथ हमने दूसरी जो कुछ मेजर्स हमारे एंड पे करने की ज़रूरत थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, वो हमने लिए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक हम ना तो हमें चलाना चाहिए उनको और ना ही वो चल सकती हैं, तो इसलिए उनको तो हमें ग्रेजुअली जो है वो विड्रा करना है, लेकिन फॉर द टाइम बींग हमें उनको कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जिस तरह हमारी एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है तो उसके अंदर हम इस स्टेज के ऊपर शायद अफोर्ड ना कर पाएँ कि उनको फौरी तौर पर वापस करें, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह इसको रिव्यू करेंगे।
गवर्नर साहब, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है कि जो इसको ग्रेजुअली कम किया जाएगा इंपोर्ट्स के जो हमारी जो इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं, ये भी हमें बताइए कि क्या हमने क्या इंपोर्ट्स पर क्या कोई हमने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है? इसमें बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा है जैसे हमने इम्पोर्ट्स को कुछ रोक दिया है, क्या ऐसा है?
देखें, इसमें थोड़ा सा आप ज़रा सा माजी करीब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था जो जून 2022 में ख़त्म हुआ है, उसके आखिरी क्वार्टर के अंदर जब हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है वो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने मिल के ये डिसाइड किया कि इम्पोर्ट्स के कुछ इम्पोर्ट्स को, नॉट सारी हर तरह की इम्पोर्ट नहीं, कुछ जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा ली जाएँ ताकि हमारा जो करंट अकाउंट का जो के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो जो अगर आपको याद हो कि मई 2022 के अंदर स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर किया जिसमें कि कुछ कोड जो है वो सर्कुलर 84, 85 और 87 में जो इम्पोर्ट्स होती हैं उसके कुछ हिस्से के ऊपर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, फिर उसको रिव्यू किया गया जुलाई के अंदर, और जुलाई 2022 के अंदर कुछ मजीद जो चीज़ों के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब मैं उसका जब देखता हूँ पूरा, इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि अब इस वक्त भी हमारी कोई 85 इन दो सर्कुलर्स के इशू होने के बावजूद भी कोई 85% के करीब हमारी इम्पोर्ट्स है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ 15% या इवन इससे भी थोड़ी कम इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जो स्टेट बैंक ने अपने सर्कुलर्स के लिए के जरिए लगाई हैं। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे जब हमारे पास इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन आई और हमने खुद भी रियलाइज किया कि बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं और कुछ जेन्युइन जो इंपोर्ट्स हैं वो भी नहीं हो पा रही, तो फिर हमने कुछ रिलैक्सेशन जो है वो देना शुरू किए, और सबसे पहले हमने इसमें जो इम्पोर्टर्स जो हमारे जो कुछ सेक्टर्स के हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर असर आ रहा था, तो उसमें हमने 8-10 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट के साथ मिलकर और गवर्नमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर। तो उन सेक्टर्स के उन इम्पोर्ट्स के ऊपर हमने उनसे ये कहा कि आपका जो पिछला जो पहले 6 माह का जो एवरेज इम्पोर्ट है जनवरी टू जून 2022 उसमें जो मंथली एवरेज इम्पोर्ट है आपका उसके बराबर आप उसको अकाउंट फार करते हुए उसके 50-60% तक आप जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो एक किस्म का हमने उनको टेम्परेरी रिलीफ दे दिया ताकि उनका जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो। उसके बाद फिर हमने जो केसेस डैमरेज वाले थे जो बहुत सारी इम्पोर्ट्स जो है जिनकी शिपमेंट्स जो है वो जो एलसीज पहले ओपन हो गई थी हमारे सर्कुलर इशू होने से पहले लेकिन उनकी शिपमेंट्स बाद में आई तो वो पोर्ट्स के ऊपर स्टॉकअप होना शुरू हो गया, तो हमने उनको भी ये एक उनका जेन्युइन प्रॉब्लम था तो उनके प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने के लिए हमने ये अलाउ कर दिया कि आप वो शिपमेंट्स जो पोर्ट पे स्टॉकअप हैं और आपको डैमरेज पड़ रहे हैं आप उनको जो है वो लेके आ सकते हैं, और वो हमने बैंकों के साथ मिलकर उसको सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद छोटे जो इम्पोर्टर्स थे जिसमें छोटे छोटे एलसीज थे के अमाउंट से तो उनका भी बहुत एक कंसर्न आ रहा था कि कोई 2000 की एलसी है और कोई 5000 की एलसी है और छोटी एलसीज भी हमने रुकी हुई हैं, तो हमने और उनके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थे तो हमने उसके ऊपर भी जो है वो पहली स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये फैसला किया कि इसको जो है वो छोटे एलसीज अप टू $50,000 उनको जो है वो क्लियर कर दिया जाए, तो वो हमने पहली स्टेज के अंदर क्लियर किए। फिर उसके बाद इस लिमिट को हमने बढ़ा के 1,00,000 तक कर दिया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 31 से पहले जितने छोटे एलसीज ओपन हुए हुए थे और ओपन होने के लिए हमारे पास अप्रूवल के लिए आए हुए थे तो हमने उन सब की अप्रूवल जो है इन वन गो दी, और उसके नतीजे में जो ये सारी इंपोर्ट्स जो हैं वो $1,00,000 तक की वो हो गई और उनको काफ़ी फैसिलिटेशन जो है छोटे बिजनेसिस को मिला, और इसके अलावा जिनके छोटे पार्ट्स से इवन वो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स भी हैं तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स के लिए छोटी इंपोर्ट्स के एलसीज जो ओपन नहीं हो रही थी तो वो उनको हमने रिलीफ दे दिया। फिर एक बड़ा कंसर्न आ रहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें काफ़ी सारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो रहता है और उसके नतीजे में जो उसके स्पॉन्सर्स हैं प्रोजेक्ट के वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो हमने उन केसेस को भी बैंक्स के साथ मिलकर रिव्यू किया और हमने ये कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट का 75% तक ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है और सिर्फ 25% या उससे कम मशीनरी इंपोर्ट करने वाली रहती है तो हमने उनको भी अलाउ किया कि आप अपनी 25% या उससे कम जो मशीनरी बाकी आपकी इंपोर्ट करने वाली आप उसकी एलसी खोल लें, और बैंक्स को हमने बाकायदा उसमें हमने उसको हदायत दी कि आप इनके साथ जो है वो इनको फैसिलिटेट करें और उन इंपोर्ट्स को भी अलाउ कर दें, और उसके नतीजे में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो उनके ऊपर काम जो रुक रहा था वो दोबारा से उनका काम जो है रीस्टार्ट हो गया। तो ये सब रिलैक्सेशंस हमने दी और उसके नतीजे में हम समझते हैं कि कोई 6-7% और इम्पोर्ट्स जो हैं इन जो पाबंदियों से वो निकल गई, तो अब जो पाबंदियों जिन इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां हैं वो 8-10% से ज़्यादा नहीं है और 90% या इवन उससे थोड़ी ज़्यादा जो इम्पोर्ट्स हैं इस वक्त वो नॉर्मल वे में हो रही हैं। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि चूंकि केसेस छोटे छोटे ज़्यादा होते हैं तो कई दफ़ा बहुत सारे जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको यकीनन तकलीफ हो रही होती है और उसके नतीजे में उनका कंसर्न जो होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, और इसीलिए हम इस सिचुएशन को वक्तन फक्तन रिव्यू कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी पोजिशन इम्प्रूव हो रही है हम इसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
गौरव साहब, ये आपने एलसीज का तस्करा किया काफ़ी, तो इसमें पिछले दिनों जो है वो काफ़ी खबरें हम सुनते रहे कि बैंकों को जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की एलसीज को खोलने से मना कर दिया गया है जिसकी वजह से पेट्रोलियम की इंपोर्ट नहीं हो पा रही है। इसी तरह से हमने देखा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी ये शिकायत करती नजर आई कि जी हमारी भी एलसीज नहीं खुल रही जिसकी वजह से हमारी जो इनपुट है जो फार्मास्यूटिकल्स की उसकी इंपोर्ट में हमें दिक्कत हो रही है। सो ये ओवरऑल एलसीज के हवाले से ये जो खबरें थी मेरे ख्याल से तो ये गलत हैं। आप बताइए कि क्या हमने कोई ऐसी पाबंदियां किसी भी तरह से लगाई हैं इसके हवाले से, और ये क्या ये जो खदशात हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के क्या ये दुरुस्त हैं?
मैं सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा। इसमें देखें ऑयल इम्पोर्ट या फार्मास्यूटिकल ये तो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इसमें या इस तरह के किसी भी सेक्टर में हमने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपना नॉर्मल जो भी उनकी एलसीज आती हैं वो बैंक्स उसको ओपन कर रहे हैं, और इसी तरह फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का अगर रॉ मटेरियल है या फॉर दैट मैटर कोई भी और रॉ मटेरियल है तो उसके ऊपर भी हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, और वो भी नॉर्मल वे में इम्पोर्ट हो रहा है। आप ऑयल की चूँकि आपने बात की तो उसमें सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त हमारी जो टोटल इम्पोर्ट्स हो रही हैं उसमें से 1/3 से ज़्यादा तो ऑयल की इम्पोर्ट हैं। अगर आप इसको पहले 5 माह का देखें तो कोई 35-36% हमारी टोटल इम्पोर्ट्स का सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट है, ऑयल और गैस इम्पोर्ट है। तो इतनी बड़ी इम्पोर्ट होने के बावजूद अगर मैं समझता हूँ कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है तो ठीक नहीं। जो एलसीज ओपन हो रही हैं रूटीन के अंदर उसकी हम पेमेंट्स टाइमली इंश्योर कर रहे हैं, और हमने ऑयल एलसी ओपन करने पे या गैस की एलसी ओपन करने के ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह मेडिसिन का रॉ मटेरियल या फॉर दैट मैटर और जो इससे रिलेटेड जो दवाइयाँ या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह उसके ऊपर भी हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई कंसर्न आए तो हमारे आप नॉलेज में लाएं और इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे। और इसका एक नतीजा आप ये भी देखें कि देखें अगर हम इस तरह की इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते तो इस महीने की ये नवंबर का जो महीना ख़त्म हुआ है इसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले अक्टूबर के मुकाबले में जो अक्टूबर में $4.6 बिलियन थी वो बढ़ के तकरीबन $5.3 बिलियन हो गई हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्शन होती तो इसको तो कम होना चाहिए था ना, ये उसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं और उसमें हमने जो ये सहूलतें दी हैं रिसेंटली जो हमने रिलैक्सेशन दी हैं उसके नतीजे में इसमें जो है वो और इजाफा हुआ है। तो बाकी हम गैर ज़रूरी जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस हम रखते हैं, लेकिन ये है कि हम ज़रूरी इम्पोर्ट्स को बिल्कुल जो है वो इनकर्ज करते हैं और उसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाते।
बिल्कुल गवर्नर साहब, अब मैं आखिर में एक ओवरऑल आप जो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर की पोजिशन के हवाले से और बिलखसूस इम्पोर्ट्स इसके हवाले से ओवरऑल अगर आप कहना चाहें कि जी क्या इकदाम स्टेट बैंक ले रहा है और इसमें और क्या हम आगे देख रहे हैं इसके हवाले से अगर आप
देखिए हम ये इस तो मैं बिल्कुल फुली अप्रिशिएट करता हूं कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इनको कंटिन्यू नहीं करना, और क्योंकि उसके नतीजे में हमें पूरी तरह ये इस चीज़ का एहसास है कि हमारा बिजनेस जो है उसमें कुछ पार्ट्स जो बिजनेस के वो अफेक्ट हो रहे हैं, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो इनको ग्रेजुअली जो है वो रिलैक्स करना है, और उसके बगैर जो है वो ज़ाहिर है कि बिजनेस नहीं चल सकते। तो ये हम इसीलिए वक्तन फोक्तन इस सारी सूरत हाल को रिव्यू करते रहते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अब लोन जो गैर मुल्की कर्जे जो हैं वो वापस ज़्यादातर हो चुके हैं, थोड़े जो रहते हैं वो हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ और हमारे इन्फ्लोज जैसे आना शुरू होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे जो 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 दूसरी गवर्नमेंट के साथ या दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो उसमें उसके नतीजे में जैसे हमारे पास और फंड्स आएंगे तो उसके साथ साथ हम ये पोजीशन जो है उसको रिव्यू करते रहेंगे और साथ में आसानियां पैदा करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि नए साल के शुरुआत के साथ जो है वो हम इन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करके कुछ और मजीद बिजनेस के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि हमारा बिजनेस भी अफेक्ट ना हो और एट द सेम टाइम हमारे जो ये एक्सटर्नल साइड के जो प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको भी हम साथ साथ जो है वो उन चैलेंजेस के ऊपर पूरा उतरें और उनको एड्रेस करें। और मैं समझता हूं कि मैं बिजनेस कम्युनिटी का और अपने बैंकों का भी बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने काफ़ी हमारे साथ इस सिलसिले में अब तक कोऑपरेट किया है, और इंशाल्लाह इस कोऑपरेशन के नतीजे में हम इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जल्द बाहर आ जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला साल इस साल से हमारी मईशत के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा और हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब,
थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन, जैसा कि आपने गवर्नर साहब से सुना कि हमारे बैरूनी कर्जे उनकी अदायगियां और आने वाले वक्तों में जो हमने मजीद कर्जे लेने हैं वो तमाम के तमाम ऑन ट्रैक पर हैं, जिसकी बदौलत यकीनन हमें करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग के हवाले से वो मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नर साहब ने यह भी बताया कि इम्पोर्ट्स पर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं वो भी ग्रेजुअली खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।